मालूम है ना, सबको मालूम है। मंगलाचरण में है ना, जयताम सुरतो पंगो ममंदा मतेर गति मत सर्वस्व दाम भुजो राधा मदन मोहनो, है ना। तीनों हमारे जो तीन मुख्य विग्रह है उसमें से प्रथम विग्रह ये है मदन मोहन जी, जो कि हमारे संबंध ज्ञान को हमको बताता कि हमारा राधा और कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। उस संबंध ज्ञान को प्रकाशित करते राधा राम मदन मोहन जी, जयताम सुरतो पंगो ममंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम बोजो राधा मदन मोहन। ऐसा जयताम सुरतो पंगो, मदन मोहन की कृपा से एक पंगु व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है, जो बोल नहीं पाता है एक गुंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, तो ये मदन मोहन का प्रणाम मानता है। तो अभी हम लोग जो स्थान पर अभी आए हैं अपना वृंदावन परिक्रमा करते करते, इस स्थान का नाम है द्वादश आदित्य टीला। द्वादश मतलब बारह, बारह होता है ना इन संस्कृत में, द्वादश। द्वादश आदित्य टीला, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य का नाम है आदित्य, है ना। सूर्य देव बारह प्रकार के किरणों से, बारह प्रकार के तेज से, उन्होंने बारह प्रकार का एक उनका हर एक तेज जो निकलता है अलग अलग नाम है, हाँ। तो बारह प्रकार का जो तेज है ना, उस तेज से उन्होंने भगवान कृष्ण को गर्मी प्रदान किया था। क्या है इस घटना का बताता हूँ। कालिया दह, भगवान ने कालिया का दमन किया, तो कितने घंटों तक भगवान ने पानी के अंदर कालिया के साथ लड़ाई किया ना, तो भगवान को क्या हुआ, सर्दी लग गया, तो इस टीले के ऊपर, इतना ऊपर आके वो यहाँ पे धूप लेना चाहे, तो यहाँ पे वो धूप लेने के लिए आए क्योंकि उनको ठंडी लग गया था, तो यहाँ पे अपने मित्रों के साथ धूप लेने के लिए आए, और यह मौका देखते ही सूर्यदेव ने उनको द्वादश प्रकार के तेज से उन्होंने उनको गर्मी प्रदान किया था, इसलिए इसका नाम है द्वादश आदित्य टीला, है ना। भगवान को सूर्यदेव ने गर्मी प्रदान किया था। तो अभी जो हम बैठे हैं साथ साथ में मदन मोहन जी का मंदिर है, तो अभी मदन मोहन की स्थापना कौन किया था इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और स्थापना कैसे प्रकट हुए मदन मोहन जी, यहाँ पर प्रकट कैसे हुए मदन मोहन जी, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि भगवान के प्रपुत्र ने वज्रनाभ जी ने इस ब्रजधाम को वापस प्रकटित किया था, उसके बाद फिर से लुप्त होने के कारण कौन किया था प्रकटित, षड गोस्वामियों ने। तो अभी राधा मदन जो मोहन को जब प्रकट किया, एक कौन किया, सनातन गोस्वामी पाद ने उनको वापस प्रकटित कराया, हाँ सनातन गोस्वामी पाद ने। तो क्योंकि अभी ये जो हमारे गोस्वामी है ना, एक्चुअली गोस्वामियों की कृपा जो हमारे ऊपर ना, क्योंकि हमारा जो गौड़ीय मूड है ना, अगर हम इन गोस्वामियों को कृपा पे ही निर्भर है, एक्चुअली हम इनके शरणागत रहेंगे तभी हमारा जो जो गौड़ीय मूड है ना, ये प्रॉपर तरीके से रह पाएगा, हाँ। क्योंकि हम जिस प्रोसेस में लगे हुए हैं उसकी पूर्णता को अगर प्राप्त करना है, तो हमको इस गौड़ीय वैष्णव को साथ में लेते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए साथ में लेते हुए हमको चलना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से इस षड गोस्वामी जो है एक एक करके वो वृंदावन उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने भेज दिया, हाँ। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद को भी भेजा, इस उद्देश्य से भेजा कि ब्रज में जाके जितने भी भगवान कृष्ण की लीला स्थलियाँ उसको तुम उजागर करो, ताकि आगे आने वाले सब भक्तों का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जब मोमेंट शुरू हुआ वो कौन सा मोमेंट, संकीर्तन मोमेंट, और उस मोमेंट में कौन ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग बन रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए उस मोमेंट का जब शुरू हुआ तो उन्होंने ही किया, और शुरू करते समय ही इन गोस्वामियों को वृंदावन रवाना कर दिया कि जाके प्रकटित करो, क्योंकि आगे जाके भक्त लोग कहाँ जाएंगे, जाएंगे लीला स्थलियों का स्मरण करेंगे, बताओ भी भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे ना सभी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये प्लान था, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम, है ना। अभी निश्चित रूप से ना, अभी ये विचार करिए कि चैतन्य महाप्रभु का जो मोमेंट है ना, जो बोलते हैं नगर आदि ग्राम, है ना, नगर ग्राम कस्बा कोई भी ऐसा जगह नहीं बचेगा जहाँ पे कृष्ण भक्त नहीं होंगे, सब हर दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा आपको भक्ति मिलेगा आगे चल के। अभी देखिए इसका उदाहरण देखिए, प्रत्यक्ष कैलकुलेट करें अभी, मतलब शास्त्रों की भाषा छोड़ दीजिए कि शास्त्रों में क्या चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, भविष्यवाणी कर दिया, कब होगा क्या, वो सब छोड़िए, अपने माइंड से कैलकुलेट करिए, जो हम आज की सिचुएशन को लेकर कैलकुलेट करते हैं। हमारा मोमेंट शुरू हुआ कितना साल हुआ, 50 साल हुआ, श्री प्रभुपाद जी ने मोमेंट शुरू किया श्रील प्रभुपाद जी को सेनापति माना गया था इस मोमेंट का, है ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भी एक प्लान किए हुए भक्त थे। जैसे भगवान एक शुद्ध भक्तों के ऊपर ही कुछ प्लान करते हैं, है ना, एक शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी, उनको भेजा था भगवान ने, है ना, इस चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेनापति के रूप में उनको भेजा था। नहीं तो प्रभुपाद जी के विषय में जब हम सुनते थे, एक साधारण हम कर ही नहीं सकते, आज का व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से क्रिया करना, वो भी 70 साल के बाद, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभुपाद जी निश्चित रूप से भगवान के भेजे हुए भक्त थे। तो अभी 50 साल हमारे मूवमेंट को पूरा हुआ, 50 साल में कितने लाखों करोड़ों भक्त तो बन गए हैं, आप देख रहे हैं ना, पूरा संसार में प्रचार हो ही रहा है, और कंटिन्यू इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जो कि भक्त बना रही है और प्रचार कर रही है, और कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो कि प्रचार कर रहा है और भक्त बना रहा है, कोई मोमेंट है। हालांकि 4 संप्रदाय में से आज भी है, दूसरे संप्रदाय भी है, कुमार संप्रदाय भी है, श्री संप्रदाय भी है सब, लेकिन प्रचार के मामले में ना ये जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, मतलब ये जो हमारा इस्कॉन है, यही प्रचार ऐसा कर रहा है जो कि कंटिन्यू लाखों की संख्या में भक्त बन रहे हैं लोग। तो अभी 50 साल में कितने भक्त बने, और प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, ये संस्था 10,000 सालों तक रहेगा। तो 50 साल और 10,000 साल कैलकुलेट करिए कितने भक्त होंगे, पूरा पृथ्वी भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट जो है, पृथ्वी आचे नगर अतिक्रम पूरा होता है कि नहीं होता है, पूरा संसार भक्त बन जाएगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, सब लोग कृष्ण भक्त बनेंगे ये गोल्डन युग में 10,000 वर्ष तक। उसके बाद ये इस्कॉन भी धीरे धीरे चला लुप्त हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा ना, 10,000 साल, अभी 5,000 साल अभी शुरुआत है कलयुग का, शुरुआत है ये कलयुग का, शुरुआत है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, ये गोल्डन युग है, गोल्डन युग है, और 10,000 सालों तक ये गोल्डन युग रहने वाला है। उसके बाद भयंकर परिस्थिति है, और ऑलरेडी 5,000 सालों में अल्प बुद्धि अल्प हो रहा है, लोगों का आयु अल्प हो रहा है, अब 100 साल कौन जी रहा है, कोई नहीं जी रहा, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसे ही जब ये 10,000 साल पूरे होंगे, उसके बाद ना बच्चा जन्म लेगा, उसी दिन बड़ा होगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा, इसी प्रकार का हो जाएगा उनका, यही जीवन हो जाएगा, एक दूसरे को मार के खाएंगे लोग, हैं कि कोई किसी का नहीं होगा, इस प्रकार से घोर कलयुग जब धीरे धीरे, लेकिन 10,000 सालों तक ना सेफ है हम। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्लान किया कि 10,000 ये जो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट बनाया ना, जो बुक वितरण का, इसलिए प्रभुपाद जी ने वो ट्रस्ट को अलग रखा, इस्कॉन के साथ है, इस्कॉन का ही है, लेकिन फिर भी अलग रखा, उसके अंदर भी अलग से रखा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मंदिर के ऊपर कुछ दुविधाएं आए, कुछ दिक्कतें हों, लेकिन ये जो ग्रंथ है, बुक है ना, ये कंटिन्यू हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा और ये मोमेंट आगे बढ़ता रहेगा। इस उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने बुक ट्रस्ट अलग से बनाया, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, जो कि करोड़ों की संख्या में किताब वितरण हो रहा है और लोग भक्त बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे। तो ये कहने का था कि जो भी हमारे गोस्वामी आचार्यगण हैं, जो भी किए हैं ना, हम उनके अनुगत में ही रहते हुए हम अपना भक्ति को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जिन्होंने श्री मदन मोहन जी की स्थापना, उन्होंने प्रकटित मदन मोहन को यहाँ पे प्रकटित उन्होंने कराया था, सनातन गोस्वामी पाद जब ये चैतन्य महाप्रभु ने इनको यहाँ पे भेजा था, तो डेली का उनका रूटीन कैसा रहता था बताएं, चैतन्य सनातन गोस्वामी पाद का ये मंदिर के उस साइड भजन कुटी है, वो यहाँ पे भजन करते थे, कुटी में रह के भजन करते, छोटा सा कुटिया, आज भी छोटा सा ही है। गोस्वामी ना कभी भी, जितने भी हमारे छठ गोस्वामी है ना, ये कभी भी ना एक स्थान पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठते थे, उनको कभी इस पेड़ के नीचे बैठ के भजन करे, उस पेड़ के नीचे, उनका स्थान कोई उनका घर नहीं रहता था, ऐसे ही घूमते रहते थे वृंदावन के जंगलों में, किधर भी बैठ के भजन करते थे और लीलास्थलियों को प्रकटित कराते थे और ग्रंथों को लिखा करते थे, और जितने भी आचार्य हमारे जितने भी ग्रंथ लिखा गया ना, वो राधा दामोदर मंदिर में हम जब जाएंगे ना तो देखेंगे वहाँ पे भी ग्रंथों की रचना ज़्यादा से ज़्यादातर हुई है। प्रभुपाद जी भी बैठ के वहीं पे ग्रंथ लिखते थे, भागवतम का पहला स्कंद प्रभुपाद जी ने उधर ही बैठ के लिखा है दामोदर मंदिर में। तो हमें कहाँ पे था,
तो सर
हाँ, सनातन गोस्वामी भजन कुटी में वहाँ पे भजन करते थे। उनका रूटीन ये था कि सुबह उठते थे, सीधा कहाँ जाते थे, गोवर्धन, पैदल पैदल गोवर्धन। अभी मैंने ये क्या बोला, कमल पुष्प के समान है, लेकिन इन गोस्वामियों के लिए वो कम ज़्यादा नहीं होता था, वो भगवान के लिए होता था। तो सनातन गोस्वामी पान यहाँ से डेली पैदल वो कहाँ जाते थे? गोवर्धन, और गोवर्धन जी की डेली परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करने के बाद मथुरा जाते थे, और मथुरा में वो मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे, वहाँ से जो थोड़ा बहुत मिलता था वो लेके आते थे वापस अपने भोजन कुटी में, उसको ग्रहण करते थे और थोड़ा रेस्ट करते थे और अपना भजन करते थे। ये डेली का रूटीन था सनातन गोसाई पाद का डेली। यहाँ से अभी आज के समय के अनुसार देखें कि यहाँ से कम 25 किलोमीटर गोवर्धन है, और गोवर्धन का परिक्रमा 25 किलोमीटर है, उसके बाद वहाँ से मथुरा एक 20 किलोमीटर है, और मथुरा से आप लोग यहाँ पे आए तो कितना दूर वो भी देख रही है। तो ये डेली का रूटीन,
100 किलोमीटर
का डेली का रूटीन सनातन गोसाई पाद का ये रहता था, और कि वो भजन करते थे सुबह उठ के, इस प्रकार का करके वो मधुकरी करके वापस आके तो जो मिलता था सूखा रूखा उसको खा के फिर से थोड़ा रेस्ट करते थे और उसके बाद भजन करते थे। ये सनातन गोसाई पाद का डेली का रूटीन था। सोचिए हमारे गोस्वामी ने किस प्रकार का जीवन यापन किया, कितना बड़ी देन है उनका हमारे। तो सनातन गोस्वामी पाद तो डेली का रूटीन था ऐसा। तो एक दिन की घटना है कि गोवर्धन परिक्रमा की है मधुकर, मथुरा में जब मधुकरी कर रहा था, क्योंकि मथुरा में क्यों जाता था मधुकरी के लिए, क्योंकि मथुरा में ही सर्वसंपन्न लोग थे जिनके पास कुछ पैसे हुआ करते थे, क्योंकि मथुरा राजधानी था ना, वहीं पे लोग बड़े बड़े लोग रहा करते थे ताकि कुछ भिक्षा विक्षा मिल जाए। बाकी वृंदावन में कोई थोड़ी ना भिक्षा, तो सब लोग भिखारी थे, यहाँ पे कौन भिक्षा देगा, इसलिए मधुकरी करने के लिए स्पेशल वहाँ पे जाया करते थे वो, क्योंकि वहाँ पे संपन्न लोग थे, उनको भिक्षा भी मिलता था खाने के लिए सब। तो गोवर्धन, एक दिन की घटना है, गोवर्धन परिक्रमा की, गोवर्धन परिक्रमा के बाद कहाँ गए, मथुरा मधुकरी कर रहे थे। तो मधुकरी करते हुए एक चौबे का घर था, उनका नाम परशुराम चौबे, परशुराम चौबे। उस चौबे के घर पे उन्होंने क्या देखा, दो बालक खेल रहे हैं, दो बालक खेल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये दोनों चौबे का ही लड़के होंगे, दोनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा सनातन गोस्वामी पाद ने, कि दोनों बालक खेल रहे हैं, और खेलते खेलते एक बालक जब खेल में हारा तो नियम था ऐसा कि उसको घोड़ा बना के वो उसके ऊपर बैठ के जाएगा, जो हारा वो लेके जाएगा, है ना, जो जीता उसके स्पीड पे बैठेगा। तो उन्होंने देखा कि चौबे का जो एक लड़का था वो हार गया, तो क्या हुआ, दूसरा लड़का उसके पीठ पे बैठा वो लेके जा रहा था, फिर से खेल खेलने लगे सब। दूसरी बार दूसरा लड़का जो है वो हार गया, तो जब ये वो लड़का जो दूसरा कि चलो अभी घोड़ा बनो और मैं बैठूंगा, तो फिर ये जो मदन नाम का था, ये मदन नाम था उस लड़के का, तो वो कहाँ सीधा भाग के जो चौबे परिवार का घर में जो छोटा मंदिर था मंदिर के अंदर घुस गया, और फिर बाहर निकला ही नहीं। तो सनातन गोस्वामी पाद ने इस दृश्य को देखा और कंटिन्यू इंतजार करने लगे कि क्या वो बालक बाहर निकल के आता है। तो उन्होंने देखा कि बालक बाहर निकल के आया ही नहीं, तो फिर समझ गए कि ये निश्चित रूप से भगवान है, और ये समझ गए। और फिर से अभी क्या हुआ, अभी मधुकर हमेशा तो मधुकरी की इच्छा से जाते थे, अभी मधुकरी की इच्छा से मथुरा नहीं जा रहे थे, अभी क्या कर रहे, वो फिर से उस घर में जा के वही दृश्य वो देख रहे, तो बच्चों को खेलना है कर रहे, डेली का रूटीन हो गया उधर जाना। तो दूसरे दिन जब गए ना, उन्होंने क्या देखा कि चौबे की जो पत्नी है ना, उन बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही है और उसको खिलाना है खिचड़ी। तो खिचड़ी कैसा है, दातुन करते करते खिचड़ी बना रही है, है ना, दातुन करते करते, और उसी दातुन से खिचड़ी को चला भी दे रही है। और उसके बाद ये सब दृश्य देख रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, और फिर बाद में देखे कि वो पक गया खिचड़ी ना, तो उसी डंडे से ठंडा करके इन बच्चों को खिला भी रही है। सनातन गोस्वामी पाद सोचने लगे, रही है क्या कर रही है, ऐसा कैसा खिला रही है, वो भगवान है उसको पता नहीं है, हमको बताना चाहिए कि मैं कैसे रह सकता हूँ ये दृश्य देख के। तो उन्होंने फिर वो माता के पास, माते आप बच्चों को खिलाते हो तो थोड़ा साफ सुथरा रह के नहा धो के अच्छे से बनाया करो, ये कैसा गंदे तरीके से बना रहे हो। तो जब वो बोले कि महाराज गलती हो गया, कल से मैं अच्छे से नहा धो के बनाऊंगी, बहुत माफ़ी मांगी, और फिर से सनातन गोस्वामी पाद वापस अपने कुटी में आ गए। इधर तीसरे दिन फिर से गए सनातन गोस्वामी पाद, तो देखे कि माता अभी नहा धो रही है, फ्रेश हो रही है, सज रही है, अभी पकवान बनाना शुरू ही नहीं किया है, इधर बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। अभी ये सनातन गोस्वामी पाद को देख के तो और तकलीफ हो गया, मेरे वजह से आज ये भूखे रह रहे हैं। तो फिर से गए माता के पास, माता आप जैसा कर रहे हैं तो वैसा ही करिए, उसमें वो सब खुश थे। आप कोई मेरा रूल्स रेगुलेशन मत मानिए, आप अपने हिसाब से करिए, बच्चे बहुत भूखे हैं, तुरंत बनाइए उनको खिलाइए। तो सनातन गोस्वामी पाद तुरंत वहाँ से निकलने लगे, और जैसे ही निकले तो मदन नाम का जो लड़का था वो तुरंत ही सनातन गोस्वामी के पास के पीछे आ गया, बाबा बाबा मैं भी चलूँगा। सनातन गोस्वामी पाद को पूरे ब्रज में लोग बाबा करके पुकारते थे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि इतने उच्च कोटि महान भक्त थे ना, सब बाबा की व्यास पूर्णिमा, बाबा की पूर्णिमा। अच्छा, उस दिन वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा होता है, क्या भीड़ रहता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। और पूरा सनातन गोस्वामी पाद के ऐसा सब लोग ब्रजवासी सोचते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद हमारे साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, बाबा की पूर्णिमा। तो सनातन गोस्वामी पाद निकल रहे थे, तो मदन ने मुझे पकड़ लिया, लड़का मेरे को बाबा आपके साथ मुझे भी चलना है। तो सनातन गोस्वामी हंसने लगे कि बोले मेरे साथ क्या करोगे जाके, मेरा रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, मैं तुमको क्या खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। रोने लगा, मैं आपके साथ ही जाना है, मुझे मेरा नहीं रहना है। तो फिर बोले कि ठीक है, तुमको चलना है तो चलो। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा, कुछ भी नहीं खिला पाऊँगा, और मेरे को जो मधुकरी करके मिलता है मैं उसमें से दूंगा खाने के लिए। और रूखा सूखा कभी कुछ भी मिलता है, कभी नमक नहीं मिलता है, कभी रोटी मिलता है, कभी सूखा मिलता है, कुछ भी मिलता है, जो मिलेगा वही दूंगा मैं। तो बोले ठीक है। तो सनातन गोस्वामी बाद में बोला कि ठीक है चलो, लेकिन बालक था तो उन्होंने बोला देख भाई मैं तुमको कंधे पर नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं परिक्रमा किया और इतना दूर का मैं कंधे पर लेकर नहीं चल सकता हूँ। तो बालक बोला ठीक है, मेरा भी एक शर्त है, आप कंधे पर मत लेके चलिए, लेकिन आप आगे आगे चलते रहिए, मैं पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। सनातन गोस्वामी बात बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो सनातन गोस्वामी पास चलने लगे, बालक भी पीछे 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 पीछे
मतलब
चलता है।
ये दोनों में दो लड़कों में से एक लड़का इनके पीछे चला गया।
हाँ, इनके पीछे। अच्छा। वो दोनों चौबे के लड़के नहीं थे। हाँ। चौबे का एक ही लड़का था, दूसरा लड़का उसके लड़के के साथ खेलता
था,
तो इसलिए नहीं तो चौबे परिवार छोड़ता थोड़ी ना उनको, उनका लड़का था ही नहीं। तो फिर पीछे 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 आए सनातन गोस्वामी पास अपने भजन कुटी में आए, तब यहाँ पे उन्होंने पीछे देखा, तब जैसे ही पीछे देखा भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, जो कि मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है विग्रह। भगवान यहाँ पे विग्रह के रूप में
प्रकट, सिंगल विग्रह है क्या भगवान?
सिंगल है विग्रह। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, सिंगल विग्रह है। तो फिर भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए तो जो भी झोपड़ी ही था, ये मंदिर नहीं था तभी, मंदिर तो बाद में बना ना, झोपड़ी ही था उसमें विग्रह को बैठा दिया उन्होंने, और जो भी रूखा सूखा मिलता उनका रूटिंग बंद नहीं किया, वैसे ही जाते थे गोवर्धन परिक्रमा का मधुकरी करके लाते थे, और जो मिलता था वो उनको भोग लगाते थे और बाद में खाते थे। एक दिन की घटना है कि भगवान वो, क्योंकि सनातन गोस्वामी को रोज रूखा सूखा ही मिलता था ना, वही भोग लगाते थे, और उन्होंने कुछ दिनों के बाद भगवान ने ऐसा बोला कि सनातन, एक सपने में बोला उनको कि आप रोज एकदम सूखा सूखा भोग लगाते हो, कभी कभी रोटी के साथ नमक भी दे दिया करो। तो उस समय सनातन गोस्वामी पाद आए गुस्से में, बोले कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि मेरे साथ नहीं चलो, मेरे पास कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से, आज तुम नमक मांगा कल घी मांगेगा परसों कुछ और मांगेगा, मैं कहाँ से लग लूंगा, इसलिए आप कृपा करके आप जाइए, मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ ऐसा ही। तो भगवान डर गए, नहीं नहीं अभी अभी मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं मेरे को भेजो मत, मेरे को भेजो मत, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद भजन करने लगे, लेकिन मन के अंदर सनातन गोस्वामी के पास था ही ना कि अरे होना है, भगवान है तो भगवान की तरह उनकी सेवा पूजा होना चाहिए, लेकिन मैं क्या किंचन भिखारी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अफसोस तो अंदर था ये। तो एक शुद्ध भक्त जो होता है ना, किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में सोचता है ना, तो निश्चित रूप से भगवान उसको संपन्न करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। इसलिए कहा जाता है ना कि एक शुद्ध भक्त ना की कृपा हमारे ऊपर बहुत जरूरी है, हमेशा उसके संपर्क में रहना चाहिए, उसकी कृपा की याचना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे विषय में रंच मात्र भी सोच लिया ना, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस शुद्ध भक्त का जो सोचना है ना, वो भगवान पूर्ण करते हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, विदेश में जाके ऐसे ही गार्डन में अकेले बैठ के सोच ही रहे थे ना, और भगवान ने फिर क्या क्या दिया, सब अपने आप आया, सब अपना, केवल सोचे ही प्रभु आए। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त थे, उनका जो सोचना था वो भगवान उसको पूरा किया। तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो सोचता है एकदम बहुत परफेक्ट सोचता है ना, हमारे तरह सोच नहीं रहता है उसका, उसका जो सोच होता है बहुत ऊंचा सोच होता है। तो अंदर ग्लानि था बट क्या करे, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक दिन की घटना हुआ कि यमुना में एक व्यापारी जिसका नाम कृष्णदास कपूर, एक व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए यमुना से नाव के अंदर बहुत सारा माल भर के लेके जा रहा था तो उसी समय क्या हुआ, आधी तूफान बहुत आ गया, रात का समय था आधी तूफान आने के कारण वो देखा कि अभी मैं उसका नाव डूबने, लेकिन आधी तूफान के साथ साथ में उसका नाव कहीं फंस गया, रेत में फंस गया और रेत में फंसा तो अभी बड़ा परेशान हो गया, और इतना कितना माल उसमें भरा हुआ था, अगर वो फंस गया निकल नहीं पाया ना तो उसका पूरा बर्बाद हो जाएगा, इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहा था वो, तो बहुत परेशान होकर उसने नाव के अंदर से सोचा, इधर उधर देखा, अभी कुछ तो था ही नहीं, तो यहाँ पे उसको एक लाइट दिखाई दिया रात को, तो सोचा कि वहाँ पे जाता हूँ कुछ तो होगा, क्योंकि एक टीला है इसके ऊपर रहते थे सनातन गोस्वामी पर, तो ऊंचा था इसलिए वो दिख गया वहाँ से, तो उसने आया तो देखा कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, तो उनके शरण ग्रहण किया, बोला कि बाबा जी मेरा नाव फंस गया, आप कृपा करिए कुछ ऐसा, तो बोला भाई मैं क्या कृपा करूँ, कृपा करने वाले उधर खड़े हैं, जाके उधर प्रार्थना कर मैं क्या कृपा करूँगा, मैं तो भिखारी हूँ, इस प्रकार से अपने को दीनहीन मान के रहते थे सनातन गोस्वामी पाद, सारे गोस्वामी ऐसे ही रहते थे, तो गया हो भगवान के पास और प्रार्थना किया, और ये प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरा नौका को पार कर दीजिए, और निश्चित रूप से हमारा जो ये बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, और जो हमको फायदा होगा तो मैं आपके लिए एक मंदिर बना के दूंगा, तो इस प्रकार का राजा ने बोला, और इधर बोला उधर सब उसका नाम निकल गया, और वो गया राजा, और उसको बहुत भगवान की कृपा से उसको प्रॉफिट उस साल इतना ज़्यादा हुआ, जितना वो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा हुआ, इसलिए वो विशाल मंदिर बनाने का सोचा, होता है ना कभी कभी हमको कृपा, अगर कभी कभी मान लो 10 रुपया मिलने वाला तो 100 रुपया मिल गया तो हम कैसा सोचेंगे, अरे जितना मिल गया ना तो फिर अभी ये करते हैं ऐसा, तो ऐसा ही उसको प्रॉफिट होने ही वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया जो कि उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो गया तो उसने उसी हिसाब से मंदिर भी बनाने का सोचा, तो विशाल मंदिर बनाया, एक मंजिल मंदिर है ये, 7 फ्लोर का था, अभी सोचिए कितना ऊंचा था,
ये 7 फ्लोर
7 फ्लोर
ये एक मंजिल है ना,
हाँ 7 फ्लोर तक था ये मंदिर, तो सोचिए कितना बड़ा, अभी ये इतना बड़ा मंदिर उसने बनवाया, और सनातन गोस्वामी पाद ने स्थापना कर दी, पूजा पाठ चलने लगा, ये मुगलों को सहन नहीं हुआ, ये इतना लंबा था कि वो दिल्ली से दिखता था इतना लंबा था, और इसके ऊपर जो लाइट था ना वो दिल्ली से दिखता था, तो ये मुगलों को सहन नहीं हुआ कि हिंदू मंदिर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने फिर मुगलों ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके इसको वृंदावन के सभी मंदिरों को उन लोगों ने तोड़ा, सभी मंदिरों को, अभी गोविंद देव मंदिर जाएंगे तो 2 फ्लोर है, वो भी 7 फ्लोर था, और अभी 2 फ्लोर बचा हुआ है, तो विशाल मंदिर सब बने हुए थे जो गोस्वामी ने प्रकटित कराया बनाया, और इसको मुगलों ने सब वृंदावन के सारे मंदिरों को तोड़ा, और इतना ही नहीं मंदिर ही नहीं तोड़ना, वो विग्रह को भी फेंकते थे वो लोग, इसलिए क्या हुआ मुगलों के आक्रमण से पहले ना भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए, कहाँ चले गए, जयपुर में, अभी मदन मोहन जो है वो करौली में है, और गोविंद देव जी है उनका मूल विग्रह जो है वो जयपुर में है,
गोविंद देव
वो मूल विग्रह जयपुर में है।
अच्छा,
तो अभी मुगलों ने आक्रमण कराया, आक्रमण करने के बाद मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तो क्या हुआ कि टूटे हुए मंदिर में भगवान की पूजा पाठ नहीं होता है, कोई भी टूट गया मंदिर ना तो उसमें भगवान की पूजा पाठ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, तो इसलिए क्या हुआ कि टूटने के बाद भगवान को स्थानांतरण कर दिया गया, ये मंदिर है आगे हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन कर लेंगे, जो भगवान के मदन मोहन का जो पूजा चल रहा है फिलहाल इस समय ना वो वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पहले मदन मोहन जी थे, मंदिर बन तब टूटा नहीं था सब, तब तक उनका सेवा पूजा हुआ है इधर, अभी मूल विग्रह जो है ना वृंदावन के टोटल 99% विग्रह सब जयपुर में चले गए, बाहर चले गए, क्योंकि जयपुर में राजा लोग रहते थे ना, तो वो लोग सक्षम थे, वो मतलब ये करते थे, कोई भी आक्रमण किया तो उसका सामना करते थे वो लोग, इसलिए सब लोग यहाँ के ब्राह्मण यहाँ के गोस्वामी जितने भी लोग थे सब विग्रहों को जयपुर में ट्रांसफर कर दिया, केवल एक ही विग्रह जो कि वृंदावन छोड़ के नहीं गए, एक विग्रह दो विग्रह है राधा रमन देव जी और बाके बिहारी, वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, क्यों नहीं गए, उस समय राधा रमन जो थे ना वो शालिग्राम के रूप में थे, तो सनातन गोस्वामी अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास रहा करते थे, इसलिए शालिग्राम उस समय थे। वो बाद में प्रकट होके विग्रह बन गए, शालिग्राम से प्रकट होके विग्रह, क्या सुंदर विग्रह है, इसलिए वो बच गए। और दूसरा बांके बिहारी को जाना ही नहीं था वृंदावन छोड़ के, तो उन्होंने क्या किया, वो मंदिर छोड़ के कहीं जंगल में छुप गए। वापस जब आक्रमण करके सब चले गए तो वापस निकल आए ऐसा। तो निधि वन में फिर से उनका प्राकट्य हुआ, मदन बाकी बिहारी का, बाकी बिहारी का प्रकट निधि बन में हुआ है। तो वहाँ से फिर उनका स्थापित किया गया, मंदिर बनाया गया। तो वहाँ पे है मूल विग्रह दो ही है वृंदावन में, एक राधा रमन देव जी और दूसरा बाकी बिहारी। बाकी सब जो विग्रह है वो जयपुर चले गए हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि जब जयपुर मूल विग्रह चले गए तो ये फिर ये विग्रह का पूजा फिर क्या महिमा, ऐसा नहीं है। मूल विग्रह भले से जयपुर चले गए लेकिन उसके बदले में जो विग्रह स्थापित किया गया है ना उसको प्रतिभू विग्रह बोलते हैं। प्रतिभू मतलब उसके बदले में जो गोस्वामी जो भी आचार्य जो भी भक्तों ने वो स्थापित किया वो उसको प्रतिभू विग्रह बोलते हैं। अभी शास्त्रों के अनुसार प्रतिभू विग्रह और मूल विग्रह में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन में तो अभी तो मूल विग्रह तो है ही नहीं, ये कभी भी सोच है नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो इस समय सेवा पूजा हो रहा है वो प्रतिभु विग्रह का सेवा पूजा हो रहा है, तो इसलिए वो एक मुख्य विग्रह है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को यहाँ पे सनातन गोस्वामी के बाद ने स्थापित कर दिया, सेवा पूजा होने लगा। तो फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे कृष्णदास करके एक ब्रह्मचारी था, उसको सनातन गोस्वामी पाद ने यहाँ की सेवा पूजा दे दिया था उस समय।
कृष्णदास
उसको सेवा ब्रह्मचारी थे, तो उस ब्रह्मचारी को सेवा पूजा फिर मदन मोहन को बता के वो सनातन गोस्वामी पाद यहाँ से चले गए। बोले मैं इस प्रकार ऐसा मेरे को ऐसे ही घूम के भजन करना है, और भी प्रकट असलिया दूसरे भी है वो सब उजारित करना है, इस प्रकार से सेवा करो। वो उनको उनकी सेवा पूजा अच्छे से चले, उस ब्रह्मचारी को रख के सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से फिर से भ्रमण करने लगे। तो कृष्णदास के सपने में एक बार भगवान जी आके बोले कि तुम पूरी जाओ पुरुषोत्तम देव के इधर, वहाँ पे दो विग्रह है, एक है श्रीमती राधा रानी एक है ललिता, उसको लेके आओ। तो कृष्णदास जो ब्रह्मचारी था वो जाके उड़ीसा में वहाँ से उन विग्रहों को ला के भगवान के पास बैठाया। तो बाद में राधा रानी और ललिता बाद में
अच्छा अच्छा मदन मोहन जी के पास,
हाँ क्योंकि मदन मोहन पहले अकेले थे, अभी कृष्ण अकेले कैसे हो सकते हैं, हमेशा राधा रानी के साथ में ही रहते हैं, इसलिए वो उस ब्रह्मचारी को सपने में पुजारी के सपने में आए और पुजारी जाके वापस पुरुषोत्तम देव को बोला ये श्रीमती राधा रानी और ललिता है और मुझे सपने में भगवान ने बोला है। तो फिर वो राजा दे देता बोला ठीक है लेके जाओ। तो फिर वो लाके यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो अभी जो विग्रह है पृथ्वी विग्रह है, मंदिर खंडित होने के कारण यहाँ पे सेवा पूजा नहीं हो रहा है, कहाँ विग्रह वहाँ पे है सेवा पूजा उधर होता है। लेकिन ये लीला और सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी के कारण और दादर आदित्य टीला जहाँ पे भगवान आके रेस्ट किया था, अपने शरीर को धूप लिया था, और ये स्थली बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ पे आके दर्शन इत्यादि वगैरह करते हैं। नीचे सामने ही एक घर के उस बाजू सनातन गोस्वामी पाद का समाधि है।
अच्छा
हाँ सनातन गोस्वामी पाद का समाधि भी यही है, उनका भजन कुटी है समाधि है। और एक भजन कुटी और है जो कि गोवर्धन में है, चकलेश्वर महादेव। वृंदावन के रथ जब ब्रज धाम को प्रकट कराया ना ब्रजनाभ ने, तो उन्होंने क्षेत्रपाल को रखा, क्योंकि कोई भी हरि टेम्पल जो है ना, कृष्ण का टेम्पल जो है ना, भगवान हरि का टेम्पल, वो निश्चित रूप से उसके प्रोटेक्शन के लिए ना क्षेत्रपाल के रूप में भगवान शिव रहते हैं। आप कोई भी मंदिर देख लीजिए, राधा कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, आप निश्चित रूप से नजदीक में किधर भी शिव मंदिर निश्चित रूप से पाएंगे आप
प्रोटेक्शन
के लिए। तो वज्रनाभ ने क्या किया था, वज्र का जब उजागर किया था तो उस समय उन्होंने चार महादेव को चार कोने में स्थापित किया, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और काम्यवन में कामेश्वर महादेव। ये चारों कोनों में चार महादेव को स्थापित किया ब्रज की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चार महादेव। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद का जो भजन कुटी है वो गोवर्धन में भी है, हम गोवर्धन जाएंगे। हालांकि उधर थोड़ा अंदर रहता है इसलिए उधर नहीं जाता है, बट मंदिर दिखता है। वो कौन सा मंदिर बताया, चकलेश्वर महादेव के मंदिर के पास ही, वही उधर ही भजन करते थे। और फिर वहाँ से फिर आके यहाँ पे, तो इनका भजन कुटी यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, और उनका जो समाधि है समाधि है यहाँ पे है, अच्छा। वृंदावन में एक समाधि है, हालांकि उनका जो शरीर छूटा था वो गोवर्धन में छूटा था।
अच्छा अच्छा
हाँ, लेकिन उनका समाधि वृंदावन में यहाँ पे समाधि दिया गया उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ के उनको भजन कुटी डेली का रूटीन उनका मदन मोहन से संबंध था, उन्होंने मदन मोहन की स्थापना किया था, इसलिए मदन मोहन के ही छत्र छाया में उनकी समाधि को लगाया गया। तो ये मदन मोहन जो कि वृंदावन के मुख्य सात टेम्पल है, सात टेम्पल मुख्यतः है, उसमें से भी तीन मुख्य रूप से है जो कि हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक है मदन मोहन मंदिर, दूसरा है राधा गोविंद देव और तीसरा है राधा गोपीनाथ। क्योंकि ये तीनों ज्ञान है जो ना, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों को हमको प्रकाशित करता है तीनों ये विग्रह जो है
संबंध ज्ञान।
हाँ, और ये राधा गोविंद जो है वो प्रयोजन है और गोपीनाथ जो है अभिधेय, नहीं ये अभिधेय है और वो प्रयोजन है। तो इस प्रकार से ये तीनों विग्रह जो मुख्य हैं विग्रह, इसका कभी भी हम वृंदावन आए तो इन तीन विग्रहों का दर्शन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी और भी विग्रह महत्वपूर्ण विग्रह में से राधा दामोदर जी, और बाजू में और हाँ जीव गोस्वामी का है वो, और राधा रमन जी है, गोकुलानंद जी है, ये सब हम दर्शन करेंगे, सब जाएंगे ही दर्शन। वो ये दामोदर मंदिर में शालिग्राम शिला है, अरे गोवर्धन शिला, वो गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी पाद को दिए थे। तो भगवान ने उनको दिया था कि आप बूढ़े हो गए हो, अभी परिक्रमा मत करो, अभी आप ये शिला ले जाओ, आप इसकी रोज चार बार परिक्रमा करना और ये गोवर्धन परिक्रमा के फल के बराबर है। सनातन गोस्वामी पाद ने बाद में उसको दामोदर मंदिर में, इसलिए दामोदर मंदिर का चार बार परिक्रमा करना गोवर्धन की परिक्रमा के फल के बराबर, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा नहीं किए। अगर वृंदावन आए ना, मान लो गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाते हैं ना, तो राधा दामोदर मंदिर का निश्चित रूप से परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है, ऐसा है। तो ये मदन मोहन टेम्पल सनातन गोस्वामी पाद ने स्थापित किया है, अभी हम यहाँ से नीचे जाते हैं, मदन मोहन जी का दर्शन भी करते हैं और सनातन गोस्वामी पाद के समाधि के पास भी दंडवत में आते हैं, उधर उनका भजन कुटी है, हम उधर से जाएंगे भजन कुटी, प्लस इस मंदिर में भी एक विग्रह है रखे हैं, लेकिन सेवा पूजा नहीं होता है, लेकिन एक विग्रह ऐसा ही रखे हुए हैं, उधर भी प्रणाम करके फिर हम जाएंगे मदन मोहन, फिर समाधि, फिर नीचे से ही परिक्रमा में वापस चले जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।
राधा मदन मोहन जी की जय।